आज हम एक बहुत ही प्रेरक स्रोत का विश्लेषण करने वाले हैं। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक गहरा उद्बोधन है। शीर्षक है परमार्थ परायण बने, दैवी अनुग्रह पाएं। तो आज हमारा लक्ष्य है इस उद्बोधन के मूल संदेश को समझना और ये जानना कि भाई दूसरों की भलाई मतलब परमार्थ और ईश्वर की कृपा, इसमें क्या गहरा नाता है। चलिए इस विचार यात्रा पर निकलते हैं, क्या कहते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पूज्य गुरुदेव बात शुरू करते हैं वसंत ऋतु से
जी,
उसके खास महत्व से। वो इसे सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं मानते बल्कि चेतना के नवीनीकरण का, एक नई शुरुआत का प्रतीक मानते हैं
जी।
जैसे प्रकृति में नई खोपले फूटती है ना,
हाँ,
वैसे ही वो कहते हैं प्राणियों में, जड़ चेतन सब में एक नई उमंग, एक नया उत्साह भर जाता है।
हाँ, और ये बड़ा रोचक है कि कैसे वो बताते हैं कि कई महान आत्माओं को, जैसे समर्थ गुरु रामदास, भगवान बुद्ध, शंकराचार्य, इनको जीवन की दिशा बदलने वाली प्रेरणा अक्सर इसी वसंत ऋतु में मिली
जी।
यहाँ तक कि पूज्य गुरुदेव को खुद अपने गुरुदेव का पहला मार्गदर्शन वो भी वसंत पंचमी को ही मिला था। वो इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानते थे।
हाँ हाँ बिल्कुल। और यहीं पर पूज्य गुरुदेव एक बहुत जरूरी, एक महत्वपूर्ण अंतर समझाते हैं पशु और मनुष्य के बीच का। देखिए, वसंत की उमंग तो पशुओं में भी आती है, पर वे उसे अपनी सहज वृत्तियों, खासकर काम वासना में ही खर्च कर देते हैं। लेकिन मनुष्य के पास जो खास है वो है चिंतन और भावना की शक्ति। इस क्षमता से वो सिर्फ संतान पैदा करने के स्तर से, मतलब पशु स्तर से ऊपर उठ सकता है, महान आदर्शों के लिए जी सकता है।
अच्छा।
पर अगर वो इसका उपयोग न करे और पशु जैसा ही जिए तो गुरुदेव उसे नर पशु कहते हैं, मतलब मनुष्य होकर भी पशु समान।
और इसी संदर्भ में गुरुदेव अपने निजी अनुभव से दो बहुत चर्चित शब्दों का जिक्र करते हैं, शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण
जी,
जो उन्हें उनके गुरु से वसंत में ही मिले थे। लेकिन आप जैसा इशारा कर रहे थे, जिस तरह वो उन्हें समझाते हैं वो शायद वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आमतौर पर लोग सोचते हैं।
सही कहा आपने, बिल्कुल। ये पारंपरिक धारणाओं को सीधी चुनौती है। गुरुदेव साफ करते हैं कि शक्तिपात का मतलब शरीर में कोई बिजली का झटका लगना या कोई तरंग महसूस होना, ये सब नहीं है। उनके लिए शक्तिपात का असली मतलब है आदर्शों और सिद्धांतों के लिए जीने की अदम्य हिम्मत का पैदा होना।
हिम्मत,
हाँ हिम्मत, समाज की गलत लहरों के खिलाफ कठिनाइयों के बावजूद सच के रास्ते पर टिके रहने की अंदरूनी ताकत। जैसे मछली धारा के विपरीत तैरती है ना
जी,
वैसे ही सिद्धांतों के लिए मुश्किलों से लड़ने का साहस। उन्होंने अपना ही उदाहरण दिया कि कैसे 16 साल की उम्र में घर वालों के इतने विरोध के बाद भी वे गांधी जी के सत्याग्रह में शामिल होने के लिए अड़ गए।
अच्छा।
घर में बंद कर दिया तो भी बहाना बना के निकल भागे। यही है शक्तिपात सिद्धांतों के लिए पक्का इरादा और हिम्मत।
ये तो बहुत ही अलग और मतलब व्यवहारिक परिभाषा है। आमतौर पे तो शक्तिपात को कोई रहस्यमयी ऊर्जा का ट्रांसफर समझते हैं लोग, तो फिर कुंडलिनी जागरण, उसको लेकर तो और भी ज्यादा रहस्यमयी बातें होती हैं। उसे गुरुदेव कैसे देखते हैं? क्या वो भी वैसी नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुदेव के अनुसार कुंडलिनी जागरण का मतलब रीढ़ की हड्डी में कोई सर्पिणी शक्ति का ऊपर चढ़ना या कोई दिव्य प्रकाश दिखना, यह सब नहीं है। इसका असली व्यवहारिक अर्थ है करुणा मिश्रित विवेकशीलता का जाग जाना।
करुणा मिश्रित विवेकशीलता,
ये क्या है?
मतलब दूसरों के दुख दर्द को गहराई से महसूस करने की ताकत, वो हुई करुणा। और साथ ही सही गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसका साफ बोध होना, वो है विवेक।
अच्छा, जब ये दोनों गुण मिल जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, वही है सच्ची कुंडलिनी जागृति। उन्होंने जापान के गांधी कहे जाने वाले कागावा का बड़ा अद्भुत उदाहरण दिया।
कागावा
जी, उच्च शिक्षा ली थी उन्होंने, अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन सब छोड़कर अपना पूरा जीवन कोड़ियों, अनाथों, शराबियों, मतलब समाज के सबसे पीड़ित और उपेक्षित लोगों की सेवा में लगा दिया, उन्हीं के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर। यही है जागृत कुंडलिनी सेवा और संवेदना की, मतलब पराकाष्ठा।
वाह, करुणा मिश्रित विवेकशीलता, ये परिभाषा तो कुंडलिनी जागरण को बिल्कुल मानवीय और जमीनी स्तर पर ले आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैवी कृपा या अनुग्रह पाने का असली रास्ता वो परमार्थ और सेवा ही है। क्या ये पूजा पाठ, कर्म कांड, इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है?
निश्चित रूप से। गुरुदेव बहुत जोर देकर कहते हैं कि आस्तिकता का मतलब सिर्फ मंदिरों में जाना, पूजा करना या प्रसाद चढ़ाना बस इतना ही नहीं है। सच्ची आस्तिकता है ईश्वर के न्याय मतलब कर्मफल के सिद्धांत में पक्का विश्वास रखना, नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीना और अपने हिस्से के कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना। दूसरों की पीड़ा को दूर करने के निस्वार्थ कोशिश में ही असली खुशी है और उसी में ईश्वर की कृपा बरसती है।
सही।
वो कहते हैं कि हमें हमेशा मांगने वाले बच्चे की तरह नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज को, ईश्वर के इस संसार को कुछ देने में समर्थ जवान बनना होगा।
जवान बनना होगा।
हाँ, और इसके लिए सबसे पहले अपनी पात्रता मतलब अपनी योग्यता विकसित करनी होगी।
पात्रता, इसी दर्शन को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने शायद 3 संस्थानों की भी बात की थी, गायत्री मंदिर, ब्रह्म वर्चस्व और गायत्री नगर। संक्षेप में इनका क्या उद्देश्य बताया उन्होंने?
हाँ बिल्कुल, ये 3 संस्थान इसी व्यावहारिक आध्यात्मिकता के आप कह सकते हैं स्तंभ हैं। गायत्री मंदिर वो है आस्थिकता यानी नैतिकता, कर्तव्य परायणता और ईश्वर के न्याय में विश्वास जगाने और फैलाने के लिए।
ठीक है।
ब्रह्मवर्चस्व वो है तप के विकास के लिए, तप यानी अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगाकर उन्हें काबू में करके समाज की भलाई, लोक मंगल के कामों में लगाने की क्षमता विकसित करना।
अच्छा, तप यानी आंतरिक शक्ति।
जी। और गायत्री नगर वो एक ऐसी जगह बनाने का सपना था जहां त्यागी, सेवाभावी, समर्पित लोग एक साथ रहें और समाज परिवर्तन के बड़े काम करें, धरती पर स्वर्ग जैसा माहौल बनाने का एक जीता जागता उदाहरण बने। ये एक तरह से मनुष्य में देवत्व जगाने और धरती पर स्वर्ग उतारने का पूरा व्यावहारिक नक्शा है।
तो इस पूरी गहन चर्चा का सार यही निकलता है कि दैवी अनुग्रह या ईश्वर की कृपा पाने का जो राजमार्ग है वो बाहरी कर्म कांडों से कहीं ज्यादा हमारे अंदर के गुणों से होके गुजरता है।
जी।
जैसे हिम्मत, करुणा, विवेकशीलता, सेवाभाव और नैतिकता।
बिल्कुल।
इन गुणों को अपने अंदर विकसित करके अपनी पात्रता बढ़ाना ही मतलब असली कुंजी है।
बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार के साथ हम अपनी श्रोताओं के लिए एक गहरा प्रश्न छोड़ जाते हैं कि हम अपने भीतर उस पात्रता का विकास कैसे करें कि केवल ईश्वर से मांगने वाले याचक ही ना बने रहें, बल्कि समाज और ईश्वर के इस विराट उद्यान में अपना योगदान देने वाले यानी देने वाले सहयोगी बन सकें। इस पर सोचना मुझे लगता है हम सबके लिए सार्थक होगा।
बिल्कुल, जरूर सोचना चाहिए। ओम शांति।